दुनिया भर के कई देश, कई सभ्यताएं, कई प्रांत विदेशी ताकतों की चपेट में आए हैं, फिर लड़े और आजाद भी हुए। कई बार औरों से आजाद होना ज्यादा आसान होता है, पर खुद ब खुद बनाए ना देखे जाने वाले पिंजरों से आजाद होना मुश्किल।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है जिंदगी शान से, और आप सुन रहे हैं मुझे अपने होस्ट शांतनु सुनील सक्सेना यानी शान को। कहे अनकहे किस्से में आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी आजाद की, और ये मेरी अपनी लिखी कहानियों में से एक है। जिंदगी में तरक्की और खुशियां सबको बेहद अच्छी लगती हैं। इसके लिए कभी कभी हमें अपने शहरों से दूसरे शहर जाना पड़ता है, और कई बार तो दूसरे देशों में भी। पर क्या ऐसा है कि हम अपने शहर या अपने देश में रह के वही सफलता हासिल कर पाएं जो हम दूसरे देशों में जाके कर पाते हैं? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब है तो, पर दे पाना बहुत मुश्किल है। कई बार आपने कहते सुना होगा कई प्रतिभाशाली लोगों को कि उनके काम की कद्र नहीं है, और जिस काम की कद्र यहाँ नहीं है उस काम की कद्र दूसरे मुल्कों में इतनी ज्यादा क्यों? जवाब शायद साफ है, पर क्या इसी तरह अगर हम लोग पलायन करते रहेंगे तो क्या कभी हमारी और हमारे अपने देश के हालात में सुधार होगा? शायद नहीं। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हो सके तो यहाँ रह के खुद को भी बदलें और यहाँ के हालात भी। बदलाव जरूर आएगा अगर हम चाहें तो। खैर, कहानी शुरू करते हैं।
ये कहानी है आजाद की, जो कि हमारे और आपकी तरह कई उलझनों में फंसा एक सुलझा शख्स है। आज़ाद का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में उसके दादा के घर हुआ। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे। सन 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो कई लोगों की तरह उनका ख्वाब भी पूरा हुआ, पर यह हकीकत ऐसी थी जिसमें अधूरेपन की टेस थी। जिस आज़ादी को आंखों में बसाए वो जी रहे थे वो अब भी काफ़ी दूर थी, पर गैरों से तो लड़ लेते, अपनों से कौन लड़ पाता? गुलामी ने जैसे देश को जकड़ रखा था, पहले मुगलों की, फिर अंग्रेज़ों की, और अब गुलाम थे दौलतमंदों के। इन सब के बीच आज़ाद के दादा ने अपनी पूरी कोशिशें करी। ज़मींदारों से परेशान गरीबों को उनका हक दिलवाया। लोगों में ज्ञान का भाव देख वो आसपास के गांवों में पढ़ाने भी लगे। उनका मानना था कि देश को बदलना है तो लोगों को बदलना होगा, और लोगों को बदलने का रास्ता उनकी जागरूकता में ही है। काफ़ी सालों तक उन्होंने लोगों को पढ़ाया और स्थानीय बदलाव में सहायक रहे। एक तरफ वो धीरे धीरे बदलाव की मशाल जला रहे थे तो दूसरी ओर अपने बेटे प्रभात आज़ाद के पिता को ऐसी परवरिश दे रहे थे जिससे वो उस मशाल को और रोशन कर दे जो उन्होंने जलाई थी। पर कहते हैं ना, अक्सर चिराग जलकर भी अपने ही नीचे बसे अंधेरे को नहीं मिटा पाता। प्रभात बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थे, और जैसे जैसे बड़े होते गए अपने पिता की बातों को पीछे छोड़ते रहे। एक वक्त के बाद वो देश से बाहर पढ़ने चले गए और वहीं अपनी गृहस्थी भी बसा ली। लोगों को बदलने और उनकी मदद करने की इसी भावना को आज़ाद के दादा उसके पिता में देखना चाहते थे, पर जो जज्बा आप में हो उसको अपनी ही पीढ़ियों को दे पाना कई बार मुमकिन नहीं होता। इन्हीं वैचारिक मतभेदों की वजह से दोनों में कोई खास बनती नहीं थी, और जहां प्रभात अपनी दुनिया में खुश थे वहीं आज़ाद के दादा ने अपने जीवन को औरों की भलाई के लिए सौंप दिया था। समय बीता और देखते ही देखते प्रभात भी पिता बन गए। पिता बनते ही उन्होंने उस रिश्ते का एहसास किया जो शायद वो कभी अपने पिता से नहीं बना पाए, और फैसला किया कि अपने परिवार को हर साल अपने देश अपने घर लेके जाया करेंगे। आजाद, ये नाम उसके दादा ने ही दिया था। आजाद के बचपन में वो जब जब वापस भारत आता अपने दादाजी के पास कई तरह के आज़ादी के किस्से और कहानियां सुनता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी उसकी मनपसंद कहानियों में से एक थी। इन किस्से कहानियों का दौर मानो उसके लिए पलक झपकते ही ख़त्म हो जाता था, और जैसे ही उसके वापस जाने का समय आता वो अपने पिता से खूब झगड़ता। उसको जितना प्यार अपने पिता से था उससे कई ज़्यादा अपने दादा से, और उनसे भी ज़्यादा उन कहानियों के नायकों से। कहीं ना कहीं उसने अपने मन में तय कर लिया था कि उसे ज़िंदगी में किसकी तरह बनना है। तब वो छोटा था और अपने ख्वाबों और उन तक पहुंचने के रास्तों में उसके पिता के हस्ताक्षर ज़रूरी थे। साल दर साल ये सिलसिला चलता रहा और उसके मन में उन किरदारों ने एक गहरी छाप छोड़ी। इस बीच उसने रिश्तों के एक अलग ही रूप को देखा, समाज में लोगों के बीच चल रहे असमंजस को महसूस किया। दुनिया पहले से अब कई ज़्यादा लालची हो चली थी। दौर ज़रूर बदला था पर लोगों की बुनियाद खोखली हो चुकी थी। आज़ाद होते हुए भी सब गुलाम थे। न बचपन बचपन ही रह गया था और न जवानी जवानी ही। जहाँ सब देश में कमियाँ खोज कर उससे किनारा कर रहे थे, वहीं आज़ाद ने ठान लिया था कि वो वापस अपने दादा के पास आकर नई शुरुआत करेगा। जैसे ही उसने ये बात अपने पिता से कही, उन्होंने नाराज़गी जाहिर की। हर कोशिश के बाद भी जब वो नहीं माने तो उसने अपनी माँ को समझाया और उन्हीं की मदद से अपने दादा के पास आ गया। अब आज़ाद अपने दादा के ही नहीं बल्कि अपनी कहानियों के किरदारों के और अपने भी सपनों को पूरा करने जा रहा था। अब उसने अपने नाम के सही मायने ढूंढ लिए थे। अब वो आज़ाद था।
और यही होती है ये कहानी ख़त्म, और शुरू होता है इंतज़ार एक नई कहानी का, जिसे मैं बहुत जल्द आपके लिए लाने वाला हूँ कहे अनकहे किस्से में। उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। अगर आप किसी को जानते हैं जो यहाँ की स्थितियों से हताश है और यहाँ से बाहर जाके बसना चाहता है, तो उसे समझाएं कि वो हारे नहीं। स्थिति से निकल के भाग जाना सबसे आसान काम है। बदलाव हमेशा आता है, आप जहां भी रहें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। खैर, अपने सुझाव और आपको ये किस्से और कहानी कैसे लग रहे हैं जरूर बताएं। आपका पसंदीदा शो अब दुनिया भर की अलग अलग ऑडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स पे भी उपलब्ध है, चाहे फिर वो गाना हो, एप्पल आईट्यून्स हो, स्पॉटिफाई हो, यूट्यूब हो या कोई और। आप मुझे इजीली फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सीधे मेरी वेबसाइट से मुझे संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है www.shantanusunilsaxena.com। इसी के साथ मैं आपका होस्ट शान आपसे अलविदा चाहूंगा, और आपसे फिर एक वादा करता हूं कि जल्द से जल्द आपके लिए एक नई कहानी लेके हाजिर होऊंगा अपने इसी शो में, जिसका नाम है जिंदगी शान से। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, तरक्की करते रहिए। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।